ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है और ये उन आपराधिक घटनाओं का नाट्य और काल्पनिक रूपांतरण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को अपराधी ठहराना, किसी अपराध का फैसला सुनाना या अपराध को लेकर लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन या किसी समूह के व्यक्तियों, लिंग, जाति, समाज, संप्रदाय, धर्म या क्षेत्र की निंदा या अवमानना करना नहीं है। इस कार्यक्रम में किसी भी मत, विचारधारा या बयान आदि को लेकर किसी भी तरह के विवाद या मतभेद के लिए चैनल या HT मीडिया लिमिटेड किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए दर्शकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तां। ख्वाहिशों के दौर में हाशिए पे जिंदगी, इंसान की बनाई दुनिया इससे बेहतर क्या होगी। मैं हूं वीर राठौड़ और मैं ले चलता हूं आपको सारे देश को झकझोर देने वाले उस केस में, जिसमें CBI के इस दावे ने कि कजरी को चूना भट्टी की दहकती आग में झोंक दिया गया था, सारे देश की तंदूर कांड की यादें ताजा कर दी थी। जिसके साथ CBI ने इस दावे को पुख्ता करने के लिए सबूत जुटाने की मशक्कत भी शुरू कर दी थी।
अपने दावे को पुख्ता करने के लिए CBI ने जोधपुर के आसपास की चूना भट्टियों की तलाशी शुरू की है, पर सूत्रों के अनुसार उसे अपने इस तलाश में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके बाद CBI ने नई थ्योरी दी है कि चूना भट्टी में इतना अधिक तापमान होता है कि इतने दिनों बाद वहाँ से कुछ भी मिल पाना असंभव है।
पर सवाल उठता है कि क्या पहले CBI को भट्टी के तापमान के बारे में पता नहीं था, और अगर पता था तो उसने भट्टियों की छानबीन की ही क्यों?
संदेह हो रहा था कि क्या CBI किसी दबाव में है जिसके चलते वो नई नई कहानियां गढ़ रही थी। ये पहली बार नहीं था जब CBI पर इस तरह से सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते वो भारी दबाव में थी और उससे चूना भट्टी की हवा हवाई थ्योरी छोड़कर किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचना था जिसे देश को निष्पक्ष जांच का भरोसा मिल सके। और अब CBI ने पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा भी सामने आया जब अचानक देश को पता चला कि CBI की टीम एक नहर के पास पहुंची है।
तुम्हें लगता है we'll get something from here?
अगर उन्होंने सचमुच कजरे की लाश इस नहर में डाली है तो भी आई थिंक इट्स टू लेट, बट चांस तो लेना ही चाहिए।
हमारे पास वैसे ही कोई ऑप्शन नहीं है, शायद से हमें कोई कंकाल या गहने या कोई हथियार मिल जाए।
अरे सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला।
जरा उस तरफ जाना। हाँ उधर, हाँ हाँ थोड़ा आगे, थोड़ा हाँ। दो लोग पानी में उतरो।
ओके सर।
इस नवाजुद्दीन ने तो यही बताया था। आई एम सेंसिंग सम पॉजिटिव रिजल्ट्स टू।
आगे जाओ आगे। अगर यहाँ कुछ बह गया होगा तो धारा इतनी तेज है कि वो कम से कम 20 मीटर तक बह गया होगा।
सर सर, मिला है सर, कुछ मिला है, सोने का है।
ग्रेट ग्रेट जॉब। क्या मिला? जाओ जरा देखो क्या मिला है।
सर सर, ये मिला है सर।
इस बार CBI ने निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगाया था। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही सही निकली थी। नहर में तलाशी लेने उतरे डाइवर्स को कजरी की बॉडी तो नहीं मिली, फिर भी उसे इतना कुछ मिल गया था जो इस केस को इसके मुकाम पर जरूर पहुंचा सकता था। इधर कजरी देवी से जुड़े सबूत मिलने शुरू ही हुए थे कि देश में लाइव न्यूज की बाढ़ सी आ गई।
आप देख रहे हैं जोधपुर में जलोड़ा के पास से गुजरती ये राजीव गांधी नहर। CBI को इसी नहर में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये नहर एक एक करके राज उगलती जा रही है।
वो राज जिन्हें हथियारों ने कजरी देवी के निर्मम हत्या करने के बाद उसके शव के साथ ही नहर में जल समाधि दे दी थी। इसके साथ ही सारे देश को हिलाकर रख देने वाली इस खौफनाक वारदात की अधूरी कड़ियां जोड़कर एक समूची तस्वीर की शक्ल लेती जा रही है। एक ऐसी तस्वीर जो हथियारों की निर्ममता के पन्ने खोलती है।
आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकले पाँव के बिछुए, यहाँ से निकले कान के झुमके, यहाँ से निकला गले का लॉकेट और यहाँ से निकला कजरी की वो वाटरप्रूफ घड़ी जो अभी भी टिक टिक कर रही थी। जी हाँ, कजरी की सांसें थम गईं पर उसकी घड़ी अभी भी चल रही है।
कजरी देवी केस अनवील्स एस CBI फाइंड्स मेनी मोर एविडेंस इन द राजीव गांधी कनाल नियर जल्लादा जोधपुर। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
जिन्होंने कजरी को जलाया उन्होंने बताया था कि कैसे निर्ममता से उन्होंने कजरी देवी की हत्या की, और जब वो उसे जलाने लगे तो उनकी नजर उसके हाथ में चमक रही उस घड़ी पर पड़ी जिसे उन्होंने उसके हाथ से उतार कर नहर में फेंक दिया, जिसको बाद में कजरी के किशोर बेटे ने पहचाना।
मम्मी ने गायब होने से एक दिन पहले ही इसका लाश बदलवाया था। जो वहाँ तलाशी के दौरान चीजें मिली थी उसकी तफ्तीश के दौरान मुझे बुलाया था। मम्मी की जो घड़ी थी वो मैंने पहचान ली थी। और भी कई सारी चीजें दिखाई जिनको मैंने पहचानना था, उनको तो पहचानना ही था।
ऑफिसर, डाइवर्स को नहर में क्या क्या चीजें मिली?
ऑफिसर, इज दिस द सिग्निफिकेंट पीस ऑफ एविडेंस? ऑफिसर, क्या इन एविडेंस से हत्याकांड की सारी कड़ियां जुड़ती है?
हाँ हाँ, बिल्कुल जुड़ती है। हमारे पास वो सब कुछ है जो कोर्ट को चाहिए। एंड वी विल प्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स इन द कोर्ट एज एविडेंसेस।
इस नहर ने सिर्फ कजरी के श्रृंगार का ही नहीं, उसकी मौत का भी सामान निकाला। एक बड़ा सा चाकू, दो देसी कट्टे और वो बैट भी निकाला जिससे कजरी का सर कुचला गया था। 4 महीने की कवायद के बाद सीबीआई इस नहर तक पहुंची थी और उसके साथ थे वो आरोपी जिन्होंने कजरी को ठिकाने लगाया। श्रीनाथ नाम का ये शख्स ही सीबीआई को इस गांव तक लेकर आया। श्रीनाथ ने बताया कि इस सब में वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग थे, एक संतराम जाखड़ और दूसरा इस गैंग का सरगना किसना राम। अब सीबीआई को किसना राम की तलाश थी, जिसके लिए उसने देश भर में जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए थे। किसना राम को पुलिस ने पुणे में पकड़ा और फिर जोधपुर लेकर आए। इसी किसना राम ने ही सीबीआई को वो गड्ढा भी दिखाया जिसमें कजरी को जलाया गया था।
तो क्या यही है वो जगह?
हाँ साहब, हाँ, इसी गड्ढे में जलाया था उसको, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। सब जितनी जली उसके बाद हमने उसे उठाया और फिर नहर में फेंक दिया।
सीबीआई के मुताबिक इससे पहले कजरी को 1 सितंबर को उसकी बेची हुई गाड़ी का पेमेंट करने के बहाने लाया गया और फिर उसके बाद
ये बड़े खटेले आए।
18 तारीख को कब्र बनेगी।
क्या? क्या 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 कह रहा है? थारे मन में है क्या?
बताते हैं। ए, चल पकड़ी से, अभी पता चल जाएगा हमारे मन में क्या।
छोड़ बने।
लेकिन कजरी की कहानी इस राजीव नहर से नहीं शुरू होती है, न ही वो इन 3 किरदारों तक सीमित है। ये तीनों तो कजरी को जानते भी नहीं थे, ये तो भाड़े के आदमी थे जिन्हें कजरी को ठिकाने लगाना था और उन्होंने ये काम कर दिया। दरअसल किसना राम का गैंग इस कहानी का आखिरी सिरा है। उससे कहा गया था कि कजरी देवी उसे जिंदा मिलेगी, पर कजरी की लाश देखकर उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि उसके पास कोई फोन आया था।
सब मारो मत।
ये काम करने को तुमसे किसने कहा था? चल बोल चल।
साहब फोन आया था। साहब फोन आया था।
किसका
था? कोई बड़ा आदमी था साहब।
कौन बड़ा आदमी? एकदम ठीक से बता, कौन है ये बड़ा आदमी?
था कोई साहब, मैं जानू को नहीं। उसके बाद से लग रहा था कि वो बहुत बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सके।
क्या फोन आया था?
साहब वो बोलिया, अगर माने कजरी को सही तरीके से ठिकाने लगा दिया तो मुंह मांगा दाम भी मिलेगा और उस एसएसपी का तबादला भी कर देगा जो मन्ने तंग कर रहा है।
आखिर किसना राम पर 40 से ज्यादा अपहरण से लेकर वसूली तक के छोटे बड़े मामले चल रहे थे। जाहिर है कि जो एसएसपी उसके पीछे पड़ा था उसे ट्रांसफर कराने का लालच बुरा नहीं था, पर सवाल यह है कि किसना राम के पास आया वो फोन किस बड़े आदमी का था। इस केस में कई मोड़ और किरदार हैं जिन्हें समझना और ढूंढना नामुमकिन नहीं तो टेढ़ी खीर जरूर है। कजरी देवी का अपहरण 1 सितंबर को बिलादा से हुआ, लेकिन वहां से 200 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर लाकर उसे जलाया गया। वो जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया वो लोग इतने सतर्क थे कि उन्होंने सारे सबूत पूरी तरह से खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर जो भी हो, केस अदालत में चल रहा है जहां आने वाले वक्त के साथ इस केस की नई कड़ियां सामने आएंगी, नए खुलासे होंगे और तब आखिर में सारे देश को दहला देने वाले इस शर्मनाक कांड की असल कहानी सामने आएगी। ख्वाहिशों का घोड़ा बेफिक्र भागता है, बिना ये सोचे कि आगे मौत के अंधकार में डूबी गहरी खाई भी हो सकती है। इसीलिए ख्वाहिशें रखें पर एक मजबूत लगाम के साथ। सजग रहिए, क्योंकि अगर मैं और आप बदल गए तो सिस्टम के तो बाप को भी बदलना होगा।
फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तान।